आज हम इस सवेरे की प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक क्रमांक है 7। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्ष आम्लादि भी उल्वण मातृभक् आम्लादि भी उल्वण मातृभुक्तरुपसृष्ट सर्वांगोत् स्थित वेदनः। अनुवाद। माता के खाए गए कड़वे, तीखे, नमकीन और खट्टे, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सौम्य और तीव्र भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है, जो बड़ी ही असह्य होती है। माता के गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी शारीरिक अवस्था का वर्णन करना, पूरा वर्णन करना बहुत ही असंभव है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में रहना बहुत मुश्किल है। और ये भगवान का आशीर्वाद है कि जो कष्ट सहने वाला होता है उसे वो कष्ट सहने की शक्ति भी भगवान देते हैं, इसलिए वो इस शरीर में जी पाता है, चाहे गर्भ के अंदर या गर्भ के बाहर। तो हम देख सकते हैं कि पीड़ा गर्भ को होती रहती है, चाहे वो संवेदना उसकी पहले कम हो और बाद में ज़्यादा हो विकसित होने के बाद, लेकिन पीड़ा ये होती ही है। किसी भी रूप में गर्भ अवस्था में गर्भ को पीड़ा होती रहती है, और ख़ास करके ये विशेष बात हम समझ सकते हैं कि अधिकतर पीड़ा उसको माता की ओर से होती है। माता को पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कौन सी भावनाओं को अपनाना है, कौन सी भावनाओं को ठुकराना है, किस प्रकार के घटनाओं में भाग लेना है, किस प्रकार के घटनाओं में भाग नहीं लेना है। और ये सारे परिणाम भावनाओं के, कृतियों के, घटनाओं के उस बालक पर अच्छी तरह से या बुरी तरह से होते रहते हैं। बालक उसका एक, क्या कहते हैं उसको, पैसिव पार्टिसिपेंट, यानी कि उसको कोई अधिकार नहीं होता है चुनने का कि माता आप इस घटना में चले जाओ, माता आप ये खाना खाओ, ये मत खाओ, ये कहने की उसको कोई चॉइस नहीं होती है, केवल उसको उसका परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। तो इतना सब वर्णन दिया है बालक बालक के अनुभवों का, और मेडिकल साइंस कहता है कि 12 वीक तक उसका गर्भपात कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि जब उसके अंदर जीव होता है तो वो एक वीक के साइज के, एक सप्ताह के साइज के आगे जाकर 4 सप्ताह के साइज का बनता है, फिर जाके 6 सप्ताह के साइज का बनता है, और बीच में अगर उसका जीव चला जाता है तो सोनोग्राफी लोग डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो जीव समाप्त हो गया, अभी उसको गर्भाशय साफ करके उसका जो मृत शरीर है वो निकालना होगा। और अगर जीव अंदर है तो वो 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक बढ़ता है, फिर 8 से 10 तक बढ़ता है, 10 से 12 तक बढ़ता है, 12 से फिर 38 सप्ताह तक बढ़ जाता है। तो जीव का होना, उस गर्भ के अंदर जीव का होना, ये गर्भ की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर गर्भ के अंदर जीव है तो उसको गर्भपात करने का हमें क्या अधिकार है, क्योंकि आप गर्भपात 4 हफ्ते पर करेंगे या 12 हफ्ते पर करेंगे या 16 हफ्ते पर करेंगे या 20 हफ्ते पर अपने आप हो जाएगा, गर्भ को पीड़ा तो होती रहती है। और हमें उस असहाय गर्भ को, जिसको अपनी कोई सुरक्षा का प्लान नहीं है, अपनी कोई सुरक्षा की सुविधा नहीं है, ऐसे सुरक्षा विहीन गर्भ को बड़ी क्रूरता से अपने स्वार्थ के लिए समाप्त करना, उसके जीवन का अंत करना, हमें कोई अधिकार नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि वैसे ही जीव गर्भ में आने के वजह से कष्ट भोग रहा है, और माता और पिता और समाज अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए और कई अन्य सामाजिक विघातक कारणों के लिए उस गर्भ की हत्या कर देते हैं कन्वीनियंस, सुविधा के लिए। लेकिन कोई भी ये सोचता नहीं है कि हम सब लोग जिंदा हैं आज, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का नौजवान है, कोई नई नई शादी किया हुआ युवा व्यक्ति है, वो सब लोग इस विश्व में क्यों खड़े हैं आज, क्योंकि हमारी माता ने हमारा गर्भपात नहीं किया है, हमारे पिता ने वो निर्णय नहीं लिया था। आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट जिसमें इन्होंने इतना संशोधन किया, होमी भाभा जैसे लोग इतने अणु ऊर्जा के ऊपर संशोधन किया, हमारे देश के बड़े कितने लोगों ने देश को आज़ाद कर दिया, वो सब लोग कैसे इस विश्व में आए? क्योंकि माता पिता ने, उस समाज ने उनका गर्भपात नहीं किया था। आज हम इतने विचारपूर्वक बुद्धिपूर्वक और सफलतापूर्वक अपने जीवन को अगर बिता रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि हमारे माता पिता ने हमारा गर्भपात नहीं किया था। इसलिए हम इन जिंदगी की खुशियों को अनुभव कर सकते हैं, जिंदगी के इस सुंदर मार्ग पर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, भगवान के विषय में समझ सकते हैं। इसलिए गर्भपात ये विषय की चर्चा केवल मनुष्यों के बारे में होती है, कुत्ते बिल्लों के बारे में और पंछियों के बारे में और जानवरों के बारे में यह गर्भपात के विषय की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वो गर्भपात नहीं करते हैं, वो कोई भी निसर्ग के नियम का लोप नहीं करते हैं। केवल मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, ऐसी प्रजाति है जो गर्भपात के विषय में सोचती है कि हमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि स्वार्थ ये इस जीव प्रजाति का जो है प्रधान भाव हो गया है। इसलिए हमें ये विचार करना ज़रूरी है कि ये केवल हम सोचते हैं क्योंकि हमें वो स्वतंत्र दिया गया है, और मनुष्य जीवन में गर्भपात करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत विरला है, बहुत दुर्लभ है, और केवल इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति का विचार हो सकता है। और किसी भी जीवन में, मनुष्य जीवन के अलावा किसी भी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का विचार नहीं हो सकता है। ये केवल मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने इतना श्रेष्ठ वरदान दिया है। इसीलिए आने वाले जीव को जो मनुष्य होकर बन जी सकता है और भगवान की अनुभूति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उसका वो अधिकार छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम सबको इस गंभीर विषय पर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि गर्भपात ये विषय बहुत भयंकर है, इसके पापों के जो फल है वो भी बहुत भयंकर है। उस व्यक्ति को सूरज की रोशनी आगे कभी दिखाई नहीं पड़ेगी, इसका मतलब उसका भी बार बार गर्भपात किया जाएगा, उसी दर्द को उसको अनुभव करना पड़ेगा जिसने जो उसने उस बालक को दिया था जिसका गर्भपात उसने किया था। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग सवेरे की प्रार्थना में उपस्थित रहे।